हरे कृष्णा।
आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि अभी जो संदर्भ चल रहा है वो है प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा। तो प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा, ये सीखने का हम लोग कुछ दिनों से प्रयास कर रहे हैं और कुछ दिन तक सीखते रहेंगे इसे। तो ये जो श्लोक है सातवें अध्याय का 10वां श्लोक के बोर्ड पर लिखा है, तो आप हमारे पीछे पीछे दोहराइएगा इसे। श्री नारद उवाच अयम निष्किल विषह साक्षान अयम निष्किल विषह साक्षान महाभागवतो महाभागवतो महा त्वया न प्राप्स्यते संस्था त्वया न प्राप्स्यते संस्था अनंत अनुचरो बली अनंत अनुचरो बली। श्री नारद उवाच अयम निष्किल विषह साक्षात् महाभागवतो महा त्वया न प्राप्स्यते संस्था अनंत अनुचरो बली। श्री नारद उवाच अयम निष्किल विषह साक्षात् महाभागवतो महा त्वया न प्राप्स्यते संस्था अनंत अनुचरो बली।
धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की शब्दार्थ। श्री नारद उवाच महान संत नारद मुनि ने कहा अयम यह निष्किल विषह पूर्णतया पाप रहित साक्षात प्रत्यक्ष महाभागवतः संत भक्त महान महान त्वया तुम्हारे द्वारा न प्राप्स्यते नहीं प्राप्त करेगा संस्थाम अपनी मृत्यु अनंत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अनुचरः दास बलि अत्यंत शक्तिशाली। अनुवाद हमारे साथ साथ दोहराइएगा। नारद मुनि ने उत्तर दिया इस स्त्री के गर्भ में स्थित बालक निर्दोष तथा निष्पाप है, निस्संदेह वह महान भक्त तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शक्तिशाली दास है, अतएव तुम उसे मार पाने में सक्षम नहीं होंगे। तात्पर्य कृपया सुनिएगा। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जब असुरों या अभक्तों ने भक्त को मारने का प्रयास किया है किंतु वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के महान भक्त को कभी मार नहीं पाए। भगवान भगवत गीता में वचन देते हैं कौन्ते प्रतिजान ही नामे भक्तः प्रणश्यति। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की घोषणा है कि उनका भक्त असुरों द्वारा नहीं मारा जा सकता। प्रहलाद महाराज इस वचन की सत्यता के ज्वलंत उदाहरण हैं। नारद मुनि ने स्वर्ग के राजा से कहा भले ही तुम देवता क्यों ना हो तुम्हारे लिए और अन्यों के लिए भी इस बालक को मार पाना असंभव होगा। हरे कृष्णा। तो बहुत ही पिछले वैसे दो ही दिन से केवल क्योंकि कुछ वर्सेस का कुछ श्लोकों का इसमें तात्पर्य नहीं था तो बहुत जल्दी हम 10वें श्लोक पे इसमें आ गए हैं। तो इस अध्याय का नाम है प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा।
तो इस श्लोक में, इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी इसको विस्तृत करके बता रहे हैं, जो भगवान श्लोक में बता रहे हैं अपन नारद मुनि। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किस प्रकार से किसी भी प्रकार के असुर के लिए, यहाँ पर असुर बताया गया है और अभक्त, किसी भी प्रकार के असुर और अभक्त के लिए एक भक्त को मारना असंभव है। तो जैसा कि ये पहली बार श्रीमद् भागवतम की कोई ऐसी कथा नहीं है जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से नरसिंह देव स्वयं प्रकट हुए, उन्होंने प्रहलाद महाराज को बताया। श्रीमद् भागवतम, पूरी श्रीमद् भागवतम में हमें हर स्तर पर यही पढ़ने के लिए मिलता है कि किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जैसे किस प्रकार से ध्रुव महाराज जब गए थे यक्षों से लड़ने के लिए, किस प्रकार से भगवान ने रक्षा की। परीक्षित महाराज बताते हैं श्रीमद् भागवतम में कि उनके ग्रैंडफादर्स जो पांडव थे उनको किस प्रकार से भगवान ने बचाया, क्योंकि जो सामने जो कौरव थे इसमें भीष्म द्रोण इतने बड़े बड़े योद्धा थे, किस प्रकार से भगवान ने उनकी रक्षा की। और किस प्रकार से हम लोग चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं कि हरिदास ठाकुर जो चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्त थे, नाम आचार्य थे, जब उनको 22 बाजारों में पीटा गया, इतनी बिना किसी रहम के जब उनको पीटा गया, पर अंत में जब उनसे उनको फिर भी मृत्यु नहीं आई, क्योंकि जितने भी कष्ट उनको सहने पड़ रहे थे दरअसल वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु उठा रहे थे, वे कष्ट उन पर आ ही नहीं रहे थे। तो कैसे हर स्तर पर भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और जो भगवान ने आश्वासन दिया है श्रीमद् भगवद गीता में, शिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत छन्ति निगच्छति कौन्ते प्रति जानहि नामे भक्त्या प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। तो भगवान हमेशा अपने प्रॉमिस को बनाकर रखते हैं, हमेशा अपने प्रॉमिस को फुलफिल करते हैं। हम देखते हैं द्रौपदी के चरित्र में, श्रीवास जी के चरित्र में, किस प्रकार से हमेशा चैतन्य महाप्रभु ने, कृष्ण ने हमेशा रक्षा की है। पर फिर भी जब हम इन कथाओं को सुनते हैं तो जो फेथ, जो श्रद्धा हमारी इसमें होनी चाहिए कृष्ण की प्रोटेक्शन में, वो श्रद्धा नहीं आ पाती, क्योंकि उसका एक कारण है। उसका कारण यह है कि हमारी एक मटेरियल कंडीशनिंग है। हम कुछ समय से बाहर रह रहे हैं भौतिक संसार में, और भौतिक संसार की हर प्रकार की स्थिति से हम प्रभावित होते हैं। से कुछ सालों पहले एक नाटक आता था सीरियल में शक्तिमान, तो उसमें उस नाटक में पूरा वो प्रेजेंट करते थे कि किस प्रकार से जो शक्तिमान था वो बच्चों को बचाता था, लोगों को बचाता था। तो जब ये इतना जब फैल गया, प्रसिद्ध हो गया ये नाटक, तो बच्चों ने छत से छलांग मारने शुरू कर दी कि शक्तिमान आएगा और हमें बचाएगा। क्या बचाया किसने? नहीं बचा पाया। तो उसके बाद क्या, उन्होंने सीरियल के बिगनिंग में एक लाइन डाल दी कि इस कार्यक्रम की सारी घटनाएं मनोकाल्पनिक हैं, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो जो हमारा भौतिक संसार का जो एक्सपीरियंस है, हम देखते हैं हमारा कोई मित्र, ऐसा डियर फ्रेंड जिसकी हमें, जो हमारा बहुत प्रिय मित्र है, और जब भी हमें कभी उसकी जरूरत पड़ती है हम उसे फोन करते हैं पर कभी फोन नहीं उठाता कभी समय पे काम नहीं आता। जो बाहर सिक्योरिटी, जो हमें प्रोटेक्शन के लिए पॉलिटिशियंस, जो बड़े बड़े नेता हैं, जो आश्वासन देते हैं कि हम आपकी रक्षा करेंगे, हम आपको ये प्रदान करेंगे, पुलिस सिक्योरिटी देगी, ऐसा कभी कुछ नहीं हो पाता। तो ये जो बाहर की कंडीशनिंग से हम इतना प्रभावित हो चुके हैं कि जब हम शास्त्रों में इस बात को सुनते हैं तो वही डाउट मन में रहता है कि ये भी कहीं वैसे तो नहीं होंगे। कि पता लगे पूरी श्रीमद् भागवतम के बाद उन्होंने बता दिया कि इस भागवतम की सारी जो कथाएं थी वो मनोकाल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो डाउट है, ये संशय हमेशा रहता है माइंड में। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इतना बड़ा प्रॉमिस भगवान ने किया है कि मैं हमेशा आपकी हर समय रक्षा करूंगा, ये प्रॉमिस कृष्ण के अलावा कोई नहीं कर सकता। इसका कारण क्या है? क्योंकि देखिए हमारे जो फ्रेंड्स हैं, मान लीजिए हमारा मित्र बहुत अच्छा मित्र है, पर क्या हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ खाएगा, हमारे साथ सोएगा, हर जगह हमारे साथ जाएगा? क्या वो कर सकता है ऐसा? नहीं कर सकता। चाहे कोई पुलिस है हमें बहुत अच्छी सिक्योरिटी दे सकती हो, क्या हमेशा हमारे साथ रह सकती है? नहीं रह सकती। केवल कृष्ण ही प्रॉमिस कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण हमेशा हमारे साथ रहते हैं, परमात्मा रूप में हमेशा हमारे हृदय में रहते हैं और हर मोमेंट टू मोमेंट हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। तो ये इतना बड़ा प्रॉमिस, क्योंकि ये जो प्रहलाद महाराज का चरित्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझने के लिए। क्योंकि आप देखिए, मान लीजिए कोई भारत का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट रियली अपनी जनता को बहुत प्रेम करता है, और मान लीजिए जनता के किसी एक बच्चे पर, किसी व्यक्ति पर प्रॉब्लम आई,
तो क्या करेगा? फोन करके पुलिस को भेज देगा, किसी मंत्री को भेज देगा कि आप जाके उसको बचा लो, ये उसके उसके घर में ये प्रॉब्लम आ रही है, या कोई और प्रॉब्लम निकली, थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम निकली तो और किसी बड़े व्यक्ति को बोल देगा। पर यहां पर हम देखते हैं कि छोटे से बच्चे की, 5 साल के बच्चे की रक्षा के लिए कौन आए? स्वयं नरसिंह भगवान आए, केवल एक बच्चे के लिए। एक बच्चे के लिए भगवान ने अवतार लिया। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि कृष्ण पर्सनल लेवल पर अपने हर भक्त का ध्यान रखते हैं। तो जब हम ये सुनते हैं कि कृष्ण पर्सनल लेवल पर हमेशा अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, तो ये डाउट मन में आता है कि फिर भगवान मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? जब मुझे जरूरत पड़ती है तो भगवान क्यों नहीं आते वहां पर? ना, एक बार एक व्यक्ति था, एक लड़का, तो उसको पता लगा उसके गांव में बाढ़ आ गई है। तो उसने ये श्लोक पढ़ा था भगवत गीता का, कौन्ते प्रति जान ही नामे भक्ता प्रणशति, है ना। तो उसने कहा ये तो भगवान ने बोला है मैं रक्षा करूंगा, इसका मतलब रक्षा करेंगे। वो घर की छत पे चढ़ गया, अब पानी बढ़ता जा रहा है, बाढ़ आ गई है, पानी बढ़ता जा रहा है, आधे तक भर गया है पानी बिल्डिंग तक। तो देख रहा है खाली बोट जा रही है, सोचता है बैठू ना बैठू, कहता छोड़ यार, भगवान ने बोला रक्षा करेंगे अपने आप ही। पानी और बढ़ता गया, है ना, उसके पैरों तक पानी आ गया है। तो एक नाव जाती है, उसमें कुछ लोग बैठे, वो कह रहे आ जाओ, वो कह रहे मैं नहीं आ रहा, भगवान ने बोला मेरी रक्षा करेंगे। अच्छा, पानी बढ़ता गया और वो डूब गया। जब वो भगवान के पास पहुंचा तो भगवान ने बोला भैया आपने कहा था आप मेरी रक्षा करोगे, आपने रक्षा की नहीं मेरी। भगवान कह रहे बेवकूफ, पहले खाली नाव भेजी थी, तू बैठा क्यों नहीं? फिर तेरे को भक्त भेज दिए नाव में, तेरे को कह रहे चल साथ में, फिर नहीं चला, तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है, तेरी गलती है। तो भगवान क्या है, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम लोग उस प्रोटेक्शन को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि हमारी प्रोटेक्शन की डेफिनेशन बहुत अलग से है। हमारी जो रक्षा की जो हमारी भावना है बहुत अलग सी है। हम रक्षा कहलाते हैं कि मेरे बाल कभी सफेद ना हो, है ना, मेरे मुंह पे कभी कोई पिंपल ना आए, ये हमारी रक्षा है, है ना। जो अगर मेरे घर में बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है तो भगवान रक्षा करें, उस बिल को कम करवाएं। हमारी ये डेफिनेशन है एक्चुअली रक्षा की, प्रोटेक्शन की, कि ये रक्षा हमें मिलना चाहिए। पर जो कृष्ण हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें डिवोशनल सर्विस देके प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कृष्ण प्रोटेक्शन कर रहे हैं हमारी, भक्तों का संग देकर, हरि नाम देकर, अर्चय विग्रह देकर, इतने सुंदर मंदिर देकर, इस प्रकार से कृष्ण हमारी निरंतर रूप से रक्षा कर रहे हैं, जिसे हम समझ नहीं पा रहे कभी भी। आप में से कोई भक्त बताइए कि आप में से कभी कृष्ण कृष्णा कॉन्शियस में आने से पहले प्रार्थना की थी भगवान से कि मुझे हरि नाम का जप करने के लिए मिले, भक्तों का संग मिले, है ना, और मैं मंदिर में बैठा रहा हूं पूरे दिन, है ना। ऐसे किसने कभी प्रार्थना की थी भगवान से? कभी किसने प्रार्थना नहीं की। तो इसका मतलब क्या है कि कृष्ण जितना हम धाम जाना की हमारी इच्छा है, उससे ज्यादा कृष्ण की इच्छा है हमें अपने पास बुलाने की, हमारी रक्षा करने की। पर हमें यह बात का ध्यान रखना है कि क्या हम इन चीजों के लिए क्वालिफाइड हैं, जो हमें इतना कुछ मिल रहा है, इतनी फैसिलिटीज, इतना अच्छा भक्तों का संग, इन भक्तों के संग के लिए देवता लोग भी पागल घूम रहे होते हैं। दरअसल जब कोई व्यक्ति भक्ति करने लगता है तो जो डेमी गॉड्स हैं वो भी उसकी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। भगवान तो करते ही हैं, डेमी गॉड्स भी उसकी रक्षा करते हैं। जब ध्रुव महाराज पर संकट आया था, जब यक्षों ने आक्रमण किया, तो बता रहे सत्य लोग में हाहाकार मच गया था। सब लोग प्रार्थना कर रहे थे कि ये जो ध्रुव है भगवान का शुद्ध भक्त, ये नहीं रहा। हर व्यक्ति कंसर्न था उनके बारे में। पर हमें ये देखना है कि हम लोग जो अभी कृष्णा कॉन्शियस में आए हैं, और इतनी वैल्यूएबल जो हमारे को भक्ति प्राप्त हुई है, भक्तों का संग प्राप्त हुआ है, हरि नाम प्राप्त हुआ है, क्या इसके हम क्वालिफाइड हैं? अगर हम डीपली अंदर जाएंगे तो ये जो भी हमें मिल रहा है दैट्स एक्सट्रीम मर्सी, ये भगवान की बहुत विशेष कृपा है, एक्सट्रीम मर्सी है, जिसके कारण हमें ये मिल रहा है। देखिए, हम ऐसे गाड़ी पे ट्रेवलिंग करने जा रहे हैं हम भगवत धाम के लिए, जिस गाड़ी में कोई इंजन नहीं है, जिस गाड़ी का स्टेयरिंग नहीं है, जिस गाड़ी में टायर नहीं है, और हैरानगी की बात है ये गाड़ी फिर भी चल रही है। क्यों? क्योंकि गुरु की मर्सी रूप क्रेन ने पीछे से उठाया हुआ है, इसलिए हमारी भक्ति आगे बढ़ती जा रही है। अगर हम अपनी क्वालिफिकेशन पे जाएं, योग्यता बेचारे किच्छु नहीं पाई, तोमार करुणा सार, करुणा ना होइले कांदिया प्राण ना रखी वार। अगर हम पर्सनल क्वालिफिकेशन पे जाएं तो हम देखेंगे कि हमारे अंदर ये क्वालिफिकेशन नहीं है कि हमें कृष्णा कॉन्शियस मिल सके, इस कृष्णा कॉन्शियस को हम अचीव कर सके, ये क्वालिफिकेशन नहीं है। देखिए किसी से भी पूछा जाए कि प्रभु जी माता जी आप मंदिर कैसे आए, हमारा जवाब होगा प्रभु जी बस से आए। कोई भक्त बोलेगा प्रभु जी गाड़ी से आए, कोई भक्त बोलेगा प्रभु जी पैदल आए हैं, पास में ही घर है हमारा, भगवान की कृपा से आया हूं, कोई नहीं बोलेगा। दरअसल हम आए किससे हैं, किससे आए हैं हम लोग, भगवान की कृपा से आए हैं मंदिर में। पर यह बात कोई ध्यान नहीं रखेगा, हमारे पास ये कंसर्न रहेगा कि मैं गाड़ी से आया हूं, बस से आया हूं, कृपा से आया हूं, ये हमें नहीं ध्यान रहेगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि भगवान की कृपा हमारे पर निरंतर रूप से हो रही है और उसी कृपा के कारण अभी हम कृष्णा कॉन्शियस में टिके हुए हैं। वी नेवर प्रेड फॉर इट, हमने कभी इसके लिए प्रार्थना नहीं की थी, पर अब हमें जो इतना वैल्यूएबल मिल गया है, कुछ वस्तु मिल गई है, इसकी हम केयर नहीं करेंगे तो ये हमारे हाथ से छिन जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो हमें को वैल्यूएबल चीज मिली है, अब हमें एक सिंसियर अटेम्प्ट के थ्रू इसे प्रोटेक्ट करके रखना है। अगर हम सिंसियरिटी शो करेंगे तो सिंसियरिटी के अकॉर्डिंगली कृष्ण रेसिप्रोकेट करेंगे। और भगवान गीता में यही कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपदन्ते तांस्तथे भजामि हम, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, कि जो जो जिस मात्रा में मेरे पास आता है उसी मात्रा में मैं क्या करता हूं, रेसिप्रोकेट करता हूं। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमारा ये कर्तव्य है कि हम एक सिंसियर अटेम्प्ट करें, हम सिंसियर भक्त बने। जो भी नियम दिए गए हैं, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमारे पास हैं, उसका हम स्ट्रिक्टली फॉलो करें इन ऑर्डर टू मेक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उन नियमों का हम सख्ती से पालन करें। ऐसा करने से हम देखेंगे कि हम कृष्णा कॉन्शियस में बहुत जल्दी और बहुत तीव्रता से आगे बढ़ रहे हैं। इस वजह से राधानाथ महाराज का एक स्टेटमेंट है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। महाराज बता रहे हैं, अवर इंटेंशन मोटिव एंड सिंसियर डिवोशनल एटीट्यूड, अवर इंटेंशन मोटिव एंड सिंसियर डिवोशनल एटीट्यूड ऑफ हाउ वी परफॉर्म अवर पर्टिकुलर एक्टिविटी within the rules and regulation of Krishna consciousness will determine how we advance spiritually. कि हमारा क्या intention है, हमारा क्या motive है, कितने sincere, कितने गंभीर हैं हम भक्ति करने में, ये सब चीजें बताएंगी कि हम भक्ति में कितनी तीव्रता से आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि दरअसल कभी कभी हम लोग Krishna conscious activity तो कर रहे होते हैं पर हम Krishna conscious नहीं होते। जब हम कभी कभी चैंटिंग करते हैं हरे कृष्ण एक्सटर्नली क्या होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, इंटरनली क्या चल रहा होता है, हे भगवान कुछ धन करवा दो, बस कुछ जुगाड़ करवा दो, बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ, कुछ तो करवा दो मेरे लिए, हे भगवान कोई पूछता नहीं है, कोई फॉलोअर नहीं है मेरे आगे पीछे, कुछ तो मेरी रक्षा करवाओ, कोई तो हो आगे पीछे जो मेरा ध्यान रख सके, हे भगवान सबकी शादी हो रही है क्या मैं कुंवारा रह जाऊंगा, ये सब चीजें, ये धन जन सुंदरी, ये हर व्यक्ति इन तीन चीजों में ही घूमता रहता है बस। और तीन चीजों का जो कंबाइंड फॉर्म है वो कंबाइंड फॉर्म है फेम की इच्छा, यश, जिसे यश चाहिए उसे धन भी चाहिए, जन भी चाहिए, सुंदरी भी चाहिए और सब कुछ चाहिए। तो हमारा सब कुछ, और जब हम कृष्ण से प्रार्थना करते हैं जब करते समय, तो कृष्ण बाध्य हो जाते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए और कृष्ण हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो कृष्ण क्या है, हमें सब कुछ देंगे, जो इच्छा है हमारी उसके अकॉर्डिंगली कृष्ण रिवील कर, क्योंकि भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपदन्ते तान सदैव भजामि हम, उसी मात्रा में कृष्ण रिवील करके हमें सब कुछ दे देंगे जो हमारी इच्छा है। पर इसके साथ साथ हमें फ्रस्ट्रेशन देंगे, क्योंकि भौतिक जीवन से इन चीजों से हमें सिर्फ एक चीज मिलती है, डेट इज फ्रस्ट्रेशन, दुख। जितनी हमें चीजें मिलती जाएंगी उतनी डिमांड्स, उतना ग्रीड, उतनी चीजें बढ़ती जाएंगी, उतना फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाएगा। और उस फ्रस्ट्रेशन से जब व्यक्ति परेशान हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, तो फिर जब करते करते एक सिंसियर अटेम्प्ट करेगा कि हे भगवान कुछ नहीं चाहिए, ना धन चाहिए, ना जन चाहिए, ना सुंदरी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपनी भक्ति दीजिए आप, मुझे अपनी प्योर अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस दीजिए। जब व्यक्ति ये इस प्रार्थना पे आ जाएगा तब कृष्ण उसे शेल्टर देते हैं और तब उसके हृदय का प्योरिफिकेशन ऑफ हर्ट शुरू होता है। तो हमें यह बात का ध्यान रखना है कि कृष्ण ने प्रॉमिस किया है जो हमारी जिस मात्रा में हम सरेंडर करेंगे उस मात्रा में कृष्ण उसे पूरी करेंगे। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि अपने सिंसेरिटी के लेवल को हम बढ़ाते जाएं, क्योंकि ये कृष्ण का प्रॉमिस है और कृष्ण इसे निश्चित रूप से पूरा करेंगे। हमारा कर्तव्य क्या बनता है, सिंसियर गंभीर बनना। कैसे, अवर इंटेंशन मोटिव एंड सिंसियर डिवोशनल एटीट्यूड ऑफ हाउ वी परफॉर्म अवर पर्टिकुलर एक्टिविटी, सारी एक्टिविटी हम कैसे करते हैं, क्या इंटेंशन है, क्या मोटिव है उसके पीछे करने का? क्या मैं इसलिए कर रहा हूं ये कार्य कि मुझे बहुत यश मिलेगा इससे, लोग मेरी बहुत वाहवाही करेंगे कि प्रभु जी कितने महान भक्त हैं? क्या इस कारण से मैं कर रहा हूं? क्या इस सिंसियर डिवोशनल इस एक्टिविटी के पीछे ये मेरा मोटिव है कि कृष्ण प्रसन्न हो? ये जब चीजें देखी जाएंगी तो उसके अकॉर्डिंगली कृष्ण रेसिप्रोकेट करेंगे। नहीं तो क्या होगा, हमारा मोटिव सिर्फ यहीं तक रहेगा, हाई पोजीशन, प्रेस्टीज, ग्लोरिफिकेशन, है ना, कुछ अच्छा पद मिल जाए। सारी सेवा करने का एक ही लक्ष्य है कि मैं पदवी वाइज ऊपर बढ़ता जाऊं, मेरा ग्रेड बढ़ता जाए। जैसे कंपनी में कोई व्यक्ति होता है ना, कंपनी में रहने के बाद क्या डिजायर रहती है उसकी कि कंपनी में आया हूं मैं एक छोटी जॉब से, अब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फिर सब बस धीरे धीरे करके पोस्ट बढ़ती जाए मेरी कंपनी में। तो वही जो इंटेंशन है, वही जो मटेरियल इंटेंशन है, वो कृष्ण कॉन्शियस में आ जाती है कि पदवी वाइज हम लोग ऊपर बढ़ते रहे। भक्ति वहीं की वहीं रहती है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी वहीं होती है। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को इसके लिए बारे में बताया है कि जब हम भक्ति करते हैं तो इसके साथ साथ कुछ वीड्स उगते हैं, खर पतवार। जब ये वीड्स उगने शुरू होते हैं तो हमारी जो भक्ति का जो पौधा है वो उगना बंद हो जाता है, ये वीड्स बड़े हो जाते हैं, है ना। धन बढ़ रहा है, जन बढ़ रहा है, सुंदरी की इच्छा बढ़ रही है, जो भक्ति का पौधा वो उतने का उतना ही रह गया, छोटा सा बिल्कुल, वो बढ़ ही नहीं पा रहा। क्योंकि जो भी हम पानी डाल रहे हैं इसमें, चैंटिंग कर रहे हैं यही प्रार्थना से, धन जन सुंदरी चाहिए, हीरिंग कर रहे हैं इसी प्रार्थना से, धन जन सुंदरी चाहिए, तो पानी कहां जा रहा है? उन वीड्स में। तो वो वीड्स के पौधे बढ़ते जा रहे हैं और भक्ति का पौधा वो छोटा सा छोटा ही रह गया वहीं। तो हमारे कर्तव्य बनता है कि एक सिंसियर एफर्ट करें हम लोग, और जो भी कृष्ण कॉन्शियस की एक्टिविटी है, चाहे वो श्रवण है, जब हम सुन रहे हैं तो ध्यान पूर्वक प्योरली सुने, इस मोटिव से सुने कि कैसे मैं कृष्ण की प्रेम पूर्वक सेवा कर पाऊंगा। जब हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो इस इंटेंशन से दर्शन करें कि कैसे मैं भगवान की सेवा कर सकता हूं दर्शन करते हुए भी। जब भगवान के सामने नाच रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि कैसे मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर सकता हूं। क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट एन एक्सटर्नल गेम, ये बाहर का कोई दिखावा नहीं है कृष्णा कॉन्शियस की, प्रभु जी तो बहुत महान है, बस प्रभु जी ने आज तक कोई मॉर्निंग प्रोग्राम जीवन में मिस ही नहीं किया, पर अंदर क्या चल रहा है कृष्ण उसे चेक करते हैं कि इंटरनल क्या था उसके पीछे। तो ये जो सिंसियर एफर्ट है, ये जो सिंसियर प्रार्थना है, अगर जनरली कोई व्यक्ति प्रार्थना करेगा भगवान से कि मैं अपने एंगर को, प्राइड को, लस्ट को टॉलरेट कर सकूं, जब ये सिंसियर प्रार्थना करेगा और सिंसियर एफर्ट्स करेगा इसके लिए, देन कृष्णा स्टार्ट्स रेसिप्रोकेटिंग मोर एंड मोर। जितना हमारा एफर्ट्स बढ़ते जाएंगे उतना रेसिप्रोकेशन बढ़ता जाएगा, और जब ये चीजें होंगी तब हम देखेंगे कृष्ण की मर्सी को, कि कृष्ण कितने कृपालु हैं और हमारी हर इच्छा को इंस्टेंटली सुनते हैं बिल्कुल। क्योंकि जब हम किसी मटेरियल मोटिव से जब हम ये भक्ति के कार्य करते हैं तो मटेरियल मोटिव पूरे तो हो रहे होते हैं, पर मटेरियल मोटिव से कभी हम सेटिस्फाई नहीं होते, क्योंकि मटेरियल चीज ही ऐसी है, जितना हमें मिलता जाएगा उतना हम खोखला फील करेंगे अपने आप को, उतना और चाहिए। देखिए, अगर धन से कोई सुंदर हो, कोई खुश होता हो, तो क्या धनवानों की कमी है भारत में, है ना। अगर फॉलोअर से कोई खुश होता हो तो हम देखते हैं पॉलिटिशियंस, उनके कई कई हजारों हजारों लाखों लाखों में फॉलोअर्स हैं उनके, क्या वो खुश होते हैं उससे? अगर स्त्री से कोई खुश होता हो तो कितने लोग हैं जो शादीशुदा हैं, कितने लोग हैं जो बाहर जो इन्हीं कामों में लगे हैं बाहर, पर क्या वो उससे खुश हो पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि ये जो एक्टिविटीज हैं ये कभी हैप्पीनेस नहीं देती। तो हमें क्या करना है, एक जनरली हमें कोशिश करनी है, और जब सिंसियरली इसके लिए कोशिश करेंगे देन कृष्णा स्टार्ट्स रिवीलिंग, जो रियल ट्रुथ है कृष्ण से रिवील करना शुरू करेंगे, राइट एटीट्यूड बताएंगे हमें कि मुझे अप्रोच करने का ये राइट एटीट्यूड है, इस तरीके से आप मुझे अप्रोच कर सकते हो, वो एटीट्यूड कृष्ण बताएंगे। तो ये सब चीजें कृष्ण रिवील करना शुरू करेंगे। ये जो एक्टिविटीज मटेरियल बेनिफिट के पीछे इसके पीछे हम भाग रहे हैं, इससे हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी, हमारे हृदय का शुद्धिकरण नहीं होगा, ये कृष्ण हमें बताएंगे। तो जितनी मात्रा में हमारा सिंसियर एफर्ट होगा उतनी ही मात्रा में कृष्ण रेसिप्रोकेट करेंगे, और जब ये कृष्ण का रेसिप्रोकेशन शुरू होगा, कृष्ण हमें रिवील करना शुरू करेंगे, तब हम क्या देखेंगे कि जो सक्सेस है और फेलियर है इसकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आप सक्सेसफुल हो, कृष्ण प्रसन्न नहीं है तो वो फेलियर है, पर अगर आप फेलियर भी हो और कृष्ण प्रसन्न है तो वो क्या है, सक्सेस है, वो अचीवमेंट है लाइफ की सबसे बड़ी, कि कृष्ण प्रसन्न है उस एक्टिविटी के पीछे। और ऐसी एक्टिविटी करके, ऐसे सिंसियर एफर्ट से हमारा जो हृदय है इसका प्योरिफिकेशन शुरू होगा। श्रील प्रभुपाद जी से एक बार श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद हम आपको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद ग्रेटेस्ट सर्विस, हम आपकी सबसे बड़ी सेवा कैसे कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने उनको ये नहीं बोला कि आप बहुत प्रचार कीजिए, बहुत किताबें बांटिए, है ना, बहुत अच्छा डीटी वर्शिप कीजिए आप, है ना, बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन देकर, है ना, बहुत कलेक्शन करके, बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाकर, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट से। प्रभुपाद जी ने ऐसा कोई इनको वो नहीं दिया। प्रभुपाद ने कहा बाय लविंग कृष्णा। प्रभुपाद ने कहा ग्रेटेस्ट सर्विस टू मी, सबसे बड़ी सेवा अगर आप मेरी करना चाहते हो, लव कृष्णा। और यही राधानाथ महाराज बताते इंटेंशन मोटिव और सिंसियर डिवोशनल एटीट्यूड। लव कृष्णा, कृष्ण से प्रेम करके प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आप मुझे प्रसन्न कर सकते हो। और यही मार्ग चैतन्य महाप्रभु का मार्ग है कि हमारा कोई भी एक्टिविटी है वो किस लिए हो, फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड, फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। जब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाएगा तो वो चीजें हमें अपने आप ही प्रसन्न करेंगी और अपने आप ही खुश करेंगी। आप सोचे कि जितनी जितनी डिग्री में हम सिंसियरली और सीरियसली कृष्णा कॉन्शियस की एक्टिविटीज को फॉलो करेंगे, हम फील करेंगे कि उतना ही मात्रा में हम लोग खुश हो रहे हैं और डिवोशनल सर्विस के नेक्टर को हम फील कर पा रहे हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि हमें परम आनंद मिल सकता है भगवान के नाम का जप करके, परम आनंद मिल सकता है भगवान के दर्शन करके, परम आनंद मिल सकता है शास्त्रों को पढ़ के, परम आनंद मिल सकता है भक्तों के दर्शन करके। पर क्या हमारे साथ वो हो रहा होता है? जब जप करते हैं तो परम दुखी होते हैं हम लोग कि कब ये खत्म होगा, ये खत्म क्यों नहीं होता। बार बार माला बाहर निकाल के देखते हैं, इसमें 108 मोती हैं या 1008 मोती हैं, बार बार उसको निकालना पड़ता है बाहर कि आखिर है क्या, क्या गड़बड़ क्या हो रही है, कहीं मैं सुमेरु टाप के मैं आगे निकल गया, वही माला चलती जा रही है। तो ये जो एक्टिविटीज है कृष्णा कॉन्शियस की, जो सबसे ज्यादा हमें ब्लिस दे सकती थी, सबसे ज्यादा खुशी दे, जब करके व्यक्ति चैंट एंड बी हैप्पी, सबसे ज्यादा खुश हो सकता था, पर वो दुखी है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे जो मोटिव है वो कृष्ण की प्रसन्नता नहीं है। जब भगवान के व्यक्ति दर्शन कर रहा है तो उसकी जो मोटिव है उसके पीछे वो कृष्ण की प्रसन्नता नहीं है। और जितनी डिग्री में व्यक्ति इसको फॉलो नहीं करता, उतनी डिग्री में क्या करता है, वो एक्सपीरियंस करता है दुख का, क्योंकि उसको फॉलो नहीं कर रहा। हम मंदिर में देखते हैं कि जब कोई नया नया भक्त आता है तो नए भक्तों में जो उत्साह होता है वो इनकम्पेरेबल होता है, इनकंसीवेबल होता है, उसको समझ ही नहीं सकते। प्रभु जी क्या आप पोछा मार देंगे? बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल मार दूंगा। प्रभु जी क्या आप ये सेवा कर देंगे? यस प्रभु जी, बिल्कुल कर दूंगा। हमेशा तैयार रहते हैं क्योंकि उनके अंदर एक फीलिंग रहती है कि कहां मैं बद्ध व्यक्ति भौतिक संसार में पड़ा हुआ हूं और मेरे को भगवान की सेवा करने का मौका मिल रहा है, कितना सौभाग्यशाली हूं मैं। ये उनके अंदर एक फीलिंग होती है। पर कुछ समय रहने के बाद व्यक्ति को लगता है यार पिछले 20 साल से तो पोछा मार रहा हूं, कुछ हुआ है क्या आज तक, पिछले 20 सालों से आरती कर रहा हूं, आज भी करूंगा, पिछले 20 सालों से जब कर रहा हूं हरे कृष्णा आज तक तो कुछ हुआ नहीं, मन का फेर के मन का ना फिरा, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, तो अभी आगे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, चलाते रहो इसको बस एज अ ड्यूटी करते रहो। अभी मैं वृंदावन में गए थे पिछले 2 महीने पहले, तो श्रील प्रभुपाद जी का जो भजन कुटीर है राधा दामोदर मंदिर में, तो उसमें प्रभुपाद जी के सामने बैठ के चैंटिंग कर रहा था, तो एक चाइनीज माता जी अंदर घुसी, तो जो प्रभुपाद जी के सर्वेंट थे वो अंदर थे, तो उन्होंने प्रभुपाद जी की माला उतार कर उन माता जी को दे दी, तो माता जी लिटरली रोने लगी, प्रभुपाद, मतलब वो अपने आप को इतना फॉर्चुनेट समझ रही थी कि प्रभुपाद जी की माला हमें मिल गई है। इस भौतिक संसार का कोई व्यक्ति जिसे एक आध्यात्मिक जगत के व्यक्ति की उतारी हुई गले की माला मिल जाए, कितना सौभाग्यशाली है वो, है ना। तो एकदम ऐसी हालत हो गई थी, क्यों? क्योंकि चाइना में कोई मंदिर नहीं है, कुछ नहीं है, वहां पर प्रभुपाद जी की क्या माला कहां मिलता होगा कुछ, अपन इतना फॉर्चुनेट समझा अपने आपको। पर हमारा क्या, इतना हम लोग नॉर्मल ले लेते हैं, जैसे माला किसने पहना दी ठीक है, जिस दिन माला नहीं पहनाई कमाल है यार, माला नहीं पहनाई आज मेरे को, इतना सीनियर डिवोटी मेरे को माला ही नहीं पहनाता, कमाल है व्यासासन में बैठा हूं लेक्चर देने के लिए, ये पुरानी से माला बनाई है, बड़ा सहार होना चाहिए था। तो वो जो फीलिंग है कृष्णा कॉन्शियस की वो इवेपोरेट हो जाती है, वो उड़ जाती है कहीं पर, उसका पता ही नहीं होता कहां गई वो। तो पर ये कृष्णा कॉन्शियसनेस ये बहुत इंटरनल गेम है। कृष्णा कॉन्शियस कोई एक्सटर्नल दिखावा नहीं है। ये एक्सटर्नल दिखावे के लिए ही जब कोई व्यक्ति जो एक्सटर्नल दिखावा करता है, कुछ समय के बाद हो सकता है वो भक्ति में आगे बढ़ता जा रहा हो एक्सटर्नल रूप से, काफी साल हो गए पर अंदर से वो हलो होता है, खोखला। ये भक्ति का जो समुद्र है इसमें हमें डूब जाना है, यही आचार्य बताते हैं ना, भक्ति के समुद्र में डूब जाओ वहां पर उस व्यक्ति की हालत क्या होती है, एक फुटबॉल की तरह, उसको जितना मर्जी दबा दो आप फिर बाहर निकलेगी, जितना मर्जी प्रेस करो फिर बाहर निकलेगी, क्यों, हवा भरी हुई अंदर उसके। तो हमारा क्या है, अंदर से हम हॉलो होते हैं, खाली, खोखले एकदम। तो जितना मर्जी कुछ कर लो हमारे साथ, जितना मर्जी भाग जोर लगा के हमारे को घुसाने की कोशिश करें इस समुद्र में, हम फिर बाहर आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इंटरनली अपने आप को स्ट्रांग करना है, इंटरनली मजबूत करना है अपने आप को, कि कृष्णा कॉन्शियस की जो भी एक्टिविटी है ये किस लिए हो रही है। हर एक्टिविटी करने से पहले हमें सोचना है कि मैं भागवतम क्लास में भी बैठा हूं या बैठी हूं, किस लिए बैठा हूं, क्या कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बैठा हूं, या फिर ये सोचने के लिए कि आज क्या नया मिलेगा, या फिर ये सोचने के लिए कि मेरे को दो दिन बाद लेक्चर देना है तो शायद कुछ नया सुनने के लिए मिल जाए जो मैं आगे लेक्चर में बता दूं। किस कारण से बैठे हैं, क्या हम क्लास में बैठ, देखिए जब क्लास में प्रवक्ता बैठता है लेक्चर देने वाला, तो कितनी प्रार्थना कर रहा होता है भगवान से कि भगवान रक्षा करना, रक्षा करना, कुछ बोल सकूं। क्या श्रोता कभी ये बैठने से पहले प्रार्थना करता है कि मैं भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए सुन सकूं और जो सुन रहा हूं उसे जीवन में उतार सकूं। तो आप सोचिए, जब हमने कोई प्रार्थना की नहीं ऐसी, हमारा कोई मोटिव ही नहीं था ऐसा, हमारी कोई इंटेंशन ही नहीं थी ऐसी, तो वो जीवन में परिवर्तन कैसे हो जाएगा। जब क्लास सुनने से पहले हमारे अंदर कोई इंटेंशन ही नहीं थी कि मेरा हृदय का शुद्धिकरण हो, तो शुद्धिकरण कैसे हो जाएगा, नो चांस, कोई मतलब ही नहीं बनता उससे। तो ये जो चीजें हैं, हमें इसके लिए अपने आप को बहुत अलर्ट और बहुत ध्यानपूर्वक रखना है, क्योंकि हमें हमेशा कृष्णा कॉन्शियस में, कृष्णा कॉन्शियस चीजों से डीलिंग करते हुए ये ध्यान रखना है, सिंसियर एफर्ट ये दिखाना है हमें कि जो भी हमारी डीलिंग है वो होली स्क्रिप्चर्स, होली नेम, हर भगवान की पवित्र चीजों से हो रही है। और अगर इन चीजों के प्रति हम एक्स्ट्रा फैमिलियर हो जाएंगे, और अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं कर पाएंगे हम गुरु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो हमारा जो ये जीवन है ये बहुत ये असफल हो जाएगा। देखिए, अगर आप वृंदावन में जाएं और अगर आप किसी को कृष्ण के बारे में बताने की कोशिश करें, कोई आपकी बात सुनना ही नहीं चाहेगा। उनके अंदर एक ही होता है कि मेरे को पता है कृष्ण के बारे में, तो ये होता है कौन है हमें बताने वाले, हमें तो पता ही है सब कुछ। तो क्या होता है, वो जो हियरिंग प्लग होता है बिल्कुल बंद हो जाता है, अब आगे कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता। तो यही जो चीजें हैं कुछ समय रहने के बाद कृष्ण कॉन्शियस में हर भक्त के जीवन में आ जाती हैं, उसका जो हियरिंग मोटिव है, जो हियरिंग प्लग है उसका ऑफ हो जाता है, वो सुन रहा होता है पर वो स्ट्राइक करके निकल रहा होता है कहीं पे। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो भी हमारा हियरिंग है वो हमेशा बिल्कुल अलर्ट रहे और हमेशा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण को आनंद देने के लिए हो, गुरु को आनंद देने के लिए हो, वैष्णव को आनंद देने के लिए हो। जब हम ऐसा करने का प्रयास करेंगे, हमारी हर एक्टिविटी का पर्पस कृष्ण को, वैष्णव को, गुरु को आनंद देने के लिए होगा, तो हम देखेंगे कि हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत एक्साइटिंग हो गया है, बहुत ब्लिसफुल हो गया है। कृष्णा कॉन्शियस में जो अब टेस्ट मिल रहा है वो डिफरेंट टेस्ट है, क्यों, क्योंकि कृष्ण को आनंद देने के लिए। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा अपने इंद्रिय के लिए अगर कार्य होता है तो वो काम है, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम, जब कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए हो रहा होता है तो वो प्रेम होता है। ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, जब भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य किया जाता है तो वो हमें परम आनंद दे सकता है, तब हमें ब्लिस मिलेगा। हर कोई ब्लिस चाहता है पर कृष्ण को ब्लिस कोई नहीं देना चाहता, पर हो क्या होगा क्या, अगर हम कृष्ण को ब्लिस देंगे तो नेचुरली वो ब्लिस फ्लो करके हमारे पास आ जाएगा। देखिए, अगर हम एक बार डीपली अगर अपने बारे में सोचें तो हम कितने फॉर्चुनेट हैं कि हमें भगवान के दर्शन करने के लिए मिल रहे हैं, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। जब ब्रह्मा जी को कोई प्रार्थना करनी होती है ना कृष्ण से, विष्णु से, कृष्ण तक तो जा ही नहीं सकते खैर, जब ब्रह्मा जी को विष्णु से भी कोई प्रार्थना करनी होती है तो सागर के तट पे खड़े रहते हैं, सागर में तट पे खड़े होकर प्रार्थना करते हैं और फिर भगवान हृदय में से बताते हैं उनको कि ये कर सकते हो आप। अगर हम अपने बारे में चेक करें तो हाउ फॉर्चुनेट वी आर कि हम हमेशा आके भगवान के कभी भी दर्शन कर सकते हैं, हम आके भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के सामने नाच सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। पर अगर हम इसे पॉजिटिव वे में करें तो हमें कितना पॉजिटिव आउटबैक मिल सकता है इसका, कितना पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। पर मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से मंदिर में आ रहा है, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम शक्ति से कर रहा है, पर उसके अंदर भावना सिर्फ एक यही है कि अगर मैं पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम सख्ती से करूंगा, बिल्कुल स्ट्रिक्टली रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके, तो लोग मुझे मान देंगे, लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, लोग कहेंगे प्रभु जी कितने ग्रेट हैं, लोग मुझे प्रसाद पे बुलाएंगे घर। अगर किसी के अंदर यह भावना आएगी रिस्पेक्ट की, या और कोई कृष्ण की प्रसन्नता की भावना नहीं है, है ना, तो वो जो कृष्ण सामने, जो साक्षात कृष्ण सामने खड़े हैं, वो हमारे पे वर्क ही नहीं होगा उसमें। क्योंकि ये अथामाम प्रपदंते तान सदे भजा में, हम क्या एफर्ट कर रहे हैं? क्या हमारा एफर्ट सिंसियर था? क्या हमारा एफर्ट कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए था? नहीं, हमारा एफर्ट ये था कि मैं एक रेगुलरिटी मेंटेन करके दिखाऊं और सबको ये दिखाऊं कि मैं कभी मंगल आरती मिस नहीं करता, या मैं कभी मंदिर, कभी मैंने कोई भागवतम क्लास आज तक मिस नहीं की। तो क्या है, उसी के रेसिप्रोकेशन में हमें कृष्ण लोग भेजते हैं जो कहते हैं प्रभु जी आप तो महान हैं, प्रभु जी आप तो महान हैं, आपने कभी कोई आरती मिस ही नहीं की, है ना, प्रभु जी आइए हमारे घर में प्रसाद पे आइए, क्योंकि उन्होंने यही प्रार्थना की है, उन्हें ऐसे ही लोग मिलते हैं। और स्पेसिफिकली जिन भी भक्तों के घर में अर्चा विग्रह है, टीटीज घर में है, गौर नेता है, राधा कृष्ण वो साक्षात भगवान के साथ रह रहे हैं, ब्रजेंद्र नंदन के साथ रह रहे हैं, राधा कृष्ण के साथ घर में रह रहे हैं, गौ नेताएं के साथ घर में रह रहे हैं, दे आर सो फॉर्चुनेट। पर उन्हीं के सामने रहेंगे, उन्हीं के सामने लड़ेंगे, उनके साथ में सब कुछ करेंगे अगर, तो धीरे धीरे करके वो जो इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो जाएगी और डीटीज रेसिप्रोकेट करना बंद कर देंगे। आप सोचिए जिस घर में गौर नेताएं हैं, राधा कृष्ण हैं, उस घर में लड़ रहे हैं हम लोग, तो ये कितना रिस्पेक्ट है उनके प्रति। तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी बन जाता है। और इसी सिंसियर एफर्ट से अगर हम आगे करते रहेंगे, सिर्फ एक बार सुन ले, राधा गोविंद महाराज जी को सुन रहा था तो महाराज बताते जब भक्ति में व्यक्ति कुछ समय आगे बढ़ जाता है तो मंदिर में आता है, तीन डीटीज होते हैं, एक प्रणाम करता है और डीटीज को बोलता है तीनों बांट लेना, है ना। मंदिर में भी जैसे तीन विग्रह है, राधा कृष्ण गौर नेताएं और कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव, सो एक प्रणाम करके उसको लगता है छुट्टी हो गई। तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके धीरे धीरे करके खत्म होते हैं और हर चीज को वो ऑर्डिनरी समझने लगता है, डीटीज को ऑर्डिनरी, भक्तों को ऑर्डिनरी, है ना, भगवान के नाम को ऑर्डिनरी। और जैसे जैसे वो ऑर्डिनरी समझता रहता है, कृष्ण उसी के अकॉर्डिंगली रिवील करते हैं और वो सारी चीजें उसे ऑर्डिनरी ही लगती हैं। और अगर उन चीजों को इंपॉर्टेंस देता है तो कृष्ण उसके अकॉर्डिंगली रेसिप्रोकेट करते हैं और वो सारी चीजें उसे महान लगती हैं। तो ये सारा का सारा एफर्ट्स, दरअसल सारी चीज जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। एक बार इस वल्लस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के साथ कमरे में बात कर रहे थे तो महाराज जी बता रहे थे कि मुझे ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि मैंने भगवान के लिए कोई सेवा की है आज तक। तो अगर आप उनका नियम देखेंगे, अगर रूल, अगर आप उनका दिन देखेंगे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं महाराज के साथ 3 दिन तक रहा था एक बार, तो 3 दिन के बाद महाराज ने बोला कि आप मेरे साथ रविलोचन 4th दिन और रुक जाओ। मैंने महाराज को बोला महाराज कोई सेवा है, मेरे को जाना है। क्योंकि इम्पॉसिबल था, महाराज का शेड्यूल इतना टाइट रहता है कि आप कोई मैनेज ही नहीं कर सकता, कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति ये शेड्यूल मैनेज नहीं कर सकता। उसके बाद भी महाराज ये बात बोल रहे थे कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैंने भगवान के लिए कोई सेवा की है। तो ये जो मूड है, ये जो ह्यूमिलिटी का, ये जो विनम्रता का मूड है, ये जो रियल इंटेंशन है, ये जो सिंसियर अटेम्प्ट है, ये हैप्पीनेस देता है। ये जो सिंसियर अटेम्प्ट है, ये अहेतुकी अप्रतिहता सेवा करने का एक एंथुसियाज्म देता है। और जिस व्यक्ति को हमेशा यही फील होता रहता है कि मैंने उसके लिए इतना किया था, मैंने इस मोमेंट के लिए इतना किया है, कोई मुझे समझता नहीं है, हर किसी को मेरे प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, जब कोई व्यक्ति इस भाव में आ जाता है हमेशा दुखी रहता है कि मुझे ये मिलना चाहिए था, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, हमेशा वो व्यक्ति दुखी रहता है। तो हमें अपनी कॉन्शियसनेस को, अपने मोटिव को, अपने इंटेंशन को प्योरीफाई करना है। और वो प्योरीफाई करने का एक ही टेक्निक है, सिंसियर एफर्ट्स। जब हम सिंसियर एफर्ट्स करेंगे तो हमारे पास मर्सी शॉवर होनी शुरू होगी। जितने हमारे सिंसियर एफर्ट्स होंगे उतनी मात्रा में कृष्ण रेसिप्रोकेट करेंगे, उतनी ही मर्सी हमारे ऊपर आएगी। इस ग्रेस राजेंद्र नंदन प्रभु मायापुर में बता रहे थे कि हर भक्त को यह ध्यान देना चाहिए कि अपराधों के प्रति, वैष्णव अपराध, नाम अपराध, धाम अपराध, सेवा अपराध, इन अपराधों के प्रति बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए भक्त को। अगर वो कॉन्शियस नहीं है तो क्या है, अपराधों के चक्कर में उसके वीड्स इतने ग्रो हो जाएंगे, खरपतवार इतना बढ़ जाएगा कि वो भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, भक्ति वहीं की वहीं रह जाएगी। तो हमें ये चाहिए कि हम इस मूड को डेवलप करें और जो भी आचार्य, जो भी शास्त्र बता रहे हैं या जो भी हमें इतनी वैल्यूएबल चीजें मिली है, इनकी हम रिस्पेक्ट करें और प्रॉपर केयर करें। से एक बार कृष्णा बुक आप सबने पढ़ी होगी तो आपको पता है कि एक बार कृष्ण जब रासलीला में से गायब हो जाते हैं तो कृष्ण ही फॉर्म ले लेते हैं चतुर्भुज विष्णु का। तो जब गोपियां ढूंढते ढूंढते आती हैं चतुर्भुज विष्णु के पास, उनसे पूछती हैं कि हे विष्णु आपको प्रणाम, क्या आप बता सकते हैं हमारे कृष्ण कहाँ हैं? उनको विष्णु से कोई मतलब नहीं था, उनको उनके कृष्ण चाहिए। तो जब तक हमारे अंदर ये मोटिव नहीं आएगा कृष्ण के प्रति प्रेम का, नथिंग एल्स एक्सेप्ट कृष्णा, कुछ नहीं चाहिए भगवान के अलावा, भगवान की भक्ति के अलावा, जब तक ये मोटिव ये भावना हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक हम जितना मर्जी ट्राई कर लें मेटीरियल चीजों में फंसने का, वो मेटीरियल चीजें हमें केवल मेटीरियल फ्रस्ट्रेशन देगी, मेटीरियल दुख देगी। जितना ज्यादा हम अटेम्प्ट करेंगे कृष्ण को प्रसन्न करने का, उतनी ही मात्रा में हम लोग फील करेंगे कि हम लोग खुद प्रसन्न हो रहे हैं। जैसे एक चतक पक्षी कभी भी इस भौतिक संसार की, इस वर्ल्ड की, इस पृथ्वी का कोई पानी की बूंद नहीं पीता, चाहे वो समुद्र का पानी हो, किसी नहर का पानी हो और किसी कुंड का पानी क्यों ना हो। चतक पक्षी हमेशा अपना सर ऊपर उठा के रखता है और वेट करता है कि कब बारिश होगी और बारिश का शुद्ध पानी वो पिएगा। तो जब तक भक्तों का मूड उस चतक पक्षी की तरह नहीं होगा जिसको इस मेटीरियल वर्ल्ड का कुछ नहीं चाहिए, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, जब तक उसके अंदर ये मूड डेवलप नहीं होगा कि मुझे इस भौतिक संसार का कुछ नहीं चाहिए, तब तक वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। क्योंकि उसकी जो डिमांड है, उसकी जो डिजायर है, वो ये पूरी नहीं हो सकती कभी भी। क्योंकि हमने जो इच्छा की है, इस इच्छा की कोई लिमिट नहीं है। जितना मर्जी आता जाएगा वो छोटा पड़ता जाएगा, कम पड़ता जाएगा, कभी फुलफिल नहीं होगा। तो हमें यही ध्यान देना है इसमें कि हम लोग अपने भक्ति के रियल मूड को समझें। कृष्ण ने आश्वासन दिया है कि कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, और कृष्ण ने यह भी कहा है कि जितनी इतनी मात्रा में मेरे भक्त मेरे प्रति शरणागत होते हैं उतनी उतनी मात्रा में रेसिप्रोकेट करता हूं। तो हालांकि कृष्ण हमारी हर धरातल पर रक्षा कर रहे हैं, कृष्ण के हमारे देने में और कृष्ण के रेसिप्रोकेशन में बहुत फर्क है, पर हमें यह बात का ध्यान रखना है कि हम अपनी तरफ से अपने सिंसियर अटेम्प्ट्स को, अपनी भक्ति की गंभीरता को बढ़ाते जाएं। जितनी मात्रा में हम इस गंभीरता को बढ़ाएंगे उतनी मात्रा में हम ऑब्जर्व करेंगे कृष्ण का रेसिप्रोकेशन बहुत तीव्रता से बढ़ रहा है, और हम ये फील कर पाएंगे कि कृष्ण लव मी, भगवान हमारे से प्रेम करते हैं। हमारे ये इच्छा रहती है कि हम किस ना किसी प्रकार से भौतिक संसार के किसी व्यक्ति को खुश कर सकें। उसको खुश करने के चक्कर में ना वो कभी खुश होता है और ना हम कभी खुश हो पाते हैं। तो भक्तों की ये इच्छा रहनी चाहिए कि कोई एक्टिविटी मैं ऐसे करके दिखाऊं जिससे कृष्ण मुस्कुराएं, कृष्ण स्माइल करें उस एक्टिविटी को। जब हमारी ये डिजायर रहेगी तो हम फील कर पाएंगे कि कृष्ण स्माइल कर रहे हैं, कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं हमें देख के, ये फीलिंग हम लोग डेवलप कर पाएंगे। तो जितनी ज्यादा हमारे अंदर सिंसेरिटी होगी, जितना ज्यादा हम, उतनी ही हमारे को कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी और उतनी ज्यादा हम अपने आप को प्रोटेक्टेड फील कर पाएंगे, कृष्ण की प्रोटेक्शन को देख पाएंगे। क्योंकि कृष्ण ने भविष्य पास्ट में भी हमें प्रोटेक्ट किया है, प्रेजेंट में भी हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं और फ्यूचर में भी हमें निश्चित रूप से प्रोटेक्ट करेंगे। हमें सिर्फ क्या है, शास्त्रों की आंखों से और भक्ति के रियल मूड से उस प्रोटेक्शन को फील करना है, देखना है। क्योंकि हजारों आंखें सफिशिएंट नहीं है, इंद्र की भी हजारों आंखें हैं, पूरे शरीर पे उनकी आंखें हैं, पर इसके बाद भी वो ब्लाइंड रहे, कृष्ण को नहीं समझ पाए, वो अंधे रहे। तो इतनी आंखें नहीं चाहिए हमें, सिर्फ शास्त्रों की आंखें चाहिए हमें, सिर्फ गुरु वैष्णवों की आंखें चाहिए जिसके माध्यम से हम लोग देख पाए कि किस मात्रा में कृष्ण हमारी रक्षा कर रहे हैं और कैसे कृष्ण हमारी रक्षा कर रहे हैं। जब हम इसे फील कर पाएंगे तो हम देखेंगे कि कृष्ण का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है, और हमारे जीवन का एकमात्र कर्तव्य है कि हम अपनी सिंसेरिटी को, अपने भक्ति के अटेम्प्ट को आगे बढ़ाएं और हर चीज को बहुत गंभीरता से और सीरियसली लें। तो समय हो गया है, मैं यहीं पे विराम देना चाहूंगा। हरे कृष्णा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नितायिका और प्रेमानंद।